ओम शांति, ओम शांति। टुडेज़ टॉपिक इज द ट्रूथ अबाउट टाइम। इन द मॉर्निंग वी हर्ड अबाउट द कनेक्शन विद सुप्रीम एंड नाउ वी हर्ड अबाउट द ट्रूथ अबाउट टाइम। एंड वी ओम शांति एंड वार्म ग्रीटिंग्स टू ऑल ऑफ यू। एंड इट इज माई ग्रेट प्लेजर टू वेलकम for the distinguished personality, Dr. Savita Benji, who has dedicated her life to both medical and spiritual service. She is a senior Raj Yoga teacher, national coordinator of the women's wing of the Brahma Kumaris and the director of Mansarovar campus programs. And she was also the personal physician to the late Dadi Prakash Mani ji, former administrative head of Brahma Kumaris. And with a background in medicine, she has served selfless for decades at the Brahma Kumaris headquarters in Mount Abu. Her work spans across India and 25 plus countries, empowering women and promoting Raj Yoga meditation and healthy living. And she has led national campaigns like Nari Suraksha and Beti Bachao, Sashakt Banao, and was recently honored with the Women of Excellence Award in 2023 by Global Alliance for Women Empowerment, USA. So we are truly privileged to have her with us today. Please join me in extending a heartfelt welcome to BK Dr. Savita Ji. Over to you. Thank you.
Om Shanti. Om Shanti. आप सभी मेजॉरिटी हिंदी समझते हैं। तो आपने राजयोग के सत्रों में अभी तक समझा है स्वयं की सत्य पहचान। मैं केवल ये भौतिक शरीर नहीं, लेकिन इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा हूँ। और आत्मा अजर अमर अविनाशी है, जो अपने स्वभाव में शांत स्वरूप है, सुख स्वरूप है, प्रेम स्वरूप है, शक्ति स्वरूप है। और फिर परमात्मा की भी सत्य पहचान आपको मिली कि भगवान जो है वो निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप है, लाइट है, और उनको सभी धर्म स्वीकार करते हैं। परमात्मा के लाइट स्वरूप सभी धर्मों में मान्य है और वो परम धाम में निवास करते हैं। तो जैसे राजयोग में आत्मा और परमात्मा की पहचान आवश्यक है, उसके बिना हम राजयोग का अभ्यास नहीं कर पाएंगे, ऐसे ही हमें समय की पहचान होना भी आवश्यक है। वर्तमान समय कौन सा समय चल रहा है और इस समय के अनुसार हमारा कर्तव्य, हमारा पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो समय के महत्व को हम सभी जानते हैं कि समय किसी का इंतजार नहीं करता है, समय अपनी गति से चलता रहता है। इसीलिए कहते हैं समय की गति बलवान है, हमें समय के अनुसार चलना पड़ता है, समय हमारे अनुसार नहीं चलता है। और अगर हम समय पर कार्य करते हैं तो सफल हो जाते हैं, समय निकल जाने के बाद करने जाएंगे तो उतनी सफलता नहीं मिलेगी। आज एक विद्यार्थी है, वो परीक्षा के समय पर पढ़ता है तो उसे अपेक्षित सफलता मिलती है, और नहीं पढ़ेगा तो हो सकता है उसका एक साल बर्बाद भी हो जाए। फिर एक किसान फसल बोने के समय पर फसल बोता है तो समय पर फसल काट सकता है, लेकिन अगर फसल काटने के समय पर फसल बोएगा तो वो फसल उसे नहीं मिल पाएगी। ऐसे एक बिजनेसमैन है, वो बिजनेस की सीजन में बिजनेस कर लेता है तो वो साल भर की कमाई वो सीजन में ही कर लेता है, लेकिन अगर सीजन की बजाय सारे साल मेहनत करता रहे तो भी इतनी कमाई नहीं होगी ना। तो समय का महत्व है, और एक बार वो समय हाथ से निकल गया तो फिर पछतावा ही होता है। और ये भी समय के लिए कहते हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगो कब। तो क्यों कहा गया? क्योंकि इंसान की टालने की प्रवृत्ति होती है, आज का काम हम कल कर लेंगे, कल है ठीक है थोड़े टाइम के बाद कर लेंगे, लेकिन कैसे होना चाहिए? कल का काम भी हम आज कर लें और जो आज करना है उसे हम अभी कर लें। इसलिए कहते हैं शुभ काम में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए, और अगर हमने देरी की तो फिर ऐसी कोई ना कोई बाधा आ जाएगी कि वो कभी भी नहीं हो पाएगा, है ना? ऐसा बहुतों को अनुभव होता है। तो इसीलिए काम को टालने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। और फिर समय कभी भी सीधी रेखा में नहीं चलता, ये एक बिंदु से शुरू हो गया दूसरे बिंदु पर पूरा हो गया, ये समय की गति नहीं है। समय की गति चक्रीय है, टाइम इज साइक्लिक। आप देख रहे हैं हमारा समय जो है वो चक्र में चलता है, इसीलिए घड़ी गोल है, घड़ी सीधी नहीं है, कैसे है? गोल है। तो हमें पता है अगर अभी 12:15 हैं तो कल 24 घंटे पहले भी 12:15 थे, अब से 24 घंटे बाद भी 12:15 बजेंगे। तो चक्र माना इस बिंदु से शुरू हुआ, पूरे चक्र में घूमते हुए वापस कहाँ पहुंच रहा है? उसी बिंदु पर पहुंचेगा, और फिर घूमेगा तो भी उसी में ही घूमेगा ना। तो चक्र वैसे ही पुनरावृत होता रहता है, और इसीलिए हर दिन 12 बजते हैं, ऐसा नहीं कि कोई एक ही दिन बजते हैं। ये दिन और रात का चक्र अनवरत चल रहा है। कब से चल रहा है हम कह सकते हैं? अनादि काल से ये चक्र चल रहा है, और कब तक चलेगा वो हम कह नहीं सकते। तो ये 24 घंटे का चक्र दिन और रात का है, फिर और भी चक्र हैं, सप्ताह का चक्र है। आज शनिवार है, 7 दिन पहले भी शनिवार था, आज से 7 दिन बाद भी क्या होगा? फिर शनिवार होगा। ऐसे हर सप्ताह घूमता रहेगा। फिर महीने का चक्र है, अगर आज 26 तारीख है तो एक महीना पहले भी 26 तारीख थी, फिर एक महीने के बाद फिर क्या होगी? 26 तारीख। तो ये चक्र भी चलता रहेगा। तो और इसके आगे साल का चक्र है, अभी जुलाई का महीना है, 12 महीने पहले भी क्या था? जुलाई। अब से 12 महीने बाद भी क्या होगा? जुलाई। फिर उसके अंदर आगे बड़ा चक्र है 10 साल का, फिर उसके आगे बड़ा चक्र है 100 साल का, जिसे हम शताब्दी कहते हैं, उससे आगे बड़ा चक्र है 1000 साल का, जिसे हम सहस्राब्दी कहते हैं, और बड़ा है ये सृष्टि का चक्र, जो 5000 साल का चक्र है। 5000 साल अगर हम कहते हैं तो क्या भाव है? जो आज समय है, आज से 5000 साल पहले भी वही समय था, और अब से 5000 साल के बाद भी क्या होगा? वही समय होगा। अगर चक्र हम कह रहे हैं तो इसका मतलब यही है। तो वर्तमान समय कौन सा युग है? कौन सा युग है? जिनको जिनको राजयोग का ज्ञान मिला है उनके लिए संगम युग है, बाकी दुनिया के लिए कलयुग है। तो फिर अभी कलयुग है, तो अब से 5000 साल पहले भी कलयुग था, और 5000 साल बाद भी क्या होगा? कलयुग होगा। तो ये हूबहू पुनरावृत होता रहता है समय। तो कईयों को क्वेश्चन उठता है, 5000 क्यों कहा? तो 5000 क्यों कहा? क्योंकि हमारे शास्त्रों में तो लाखों वर्ष तक कहा हुआ है। तो 5000 साल क्यों कहा? क्योंकि ये प्रकृति की ओर से निश्चित है, जैसे दिन और रात का चक्र है 24 घंटे का। हम सवाल पूछते हैं कभी, क्यों 24 घंटे हैं? ये 24 घंटे ये ऑकवर्ड समय किसने बना दिया? क्यों नहीं सीधा 50 घंटे का दिन कर दिया? हम इतना बिजी रहते हैं, इतना काम होता है, कभी सवाल करते हैं क्या? क्योंकि हमारे जीवन में हम अनुभवी हैं, और इसका प्रकृति का क्या नियम है? जो पृथ्वी है वो अपनी अक्ष पर 24 घंटे में घूमती है, चक्र लगाती है। तो जो भाग सूर्य के सामने है वो दिन है, जो सूर्य के पीछे है वो रात है, और वो 24 घंटे लगते हैं। इसलिए दिन और रात का चक्र कितने का है? 24 घंटे का है। अब एक साल का चक्र 365 दिन का है, तो क्यों 365 दिन का है? वो भी प्रकृति की ओर से निश्चित है ना, क्यों 365 दिन डाले, 400 क्यों नहीं डाल दिए? कभी पूछते हैं हम, 400 क्यों नहीं डाल दिए, सीधे 500 क्यों नहीं डाल दिए एक साल में? तो क्यों नहीं पूछ सकते? क्योंकि पृथ्वी को सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने में कितना समय लगता है? 365 दिन लगते हैं, इसीलिए वो 365 दिन का एक साल है। तो ऐसे ही जो 5000 साल है वो प्रकृति की ओर से इस तरह निश्चित है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर केवल एक कक्षा में नहीं घूम रही, लेकिन वो सभी कक्षाओं में घूम रही है और उन सभी कक्षाओं से होते हुए फिर से अपनी मूल कक्षा में आने में उसे कितना समय लगता है? 5000 साल का समय लगता है। और इसीलिए ये सृष्टि चक्र का समय कितना है? 5000 वर्ष का समय है। और जो भी चक्र हैं, बहुत सारे चक्र प्रकृति के चक्र हैं, हमारा जीवन चक्र है, वो चक्र की विशेषता क्या होती है? ये अपने प्रारंभिक अवस्था में शुद्ध होता है, श्रेष्ठ है और शक्तिशाली है। लेकिन एक विज्ञान का नियम है, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, किसी ने सुना है इसके बारे में? क्योंकि आप में से बहुत लोग साइंस पढ़े हुए होंगे, फिजिक्स पढ़े हुए होंगे, तो किसी ने सुना है इस नियम के बारे में? नहीं सुना है? आपने सुना है। तो जो लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है, उसमें क्लोज सर्किट में जो एनर्जी है वो धीरे धीरे डिप्लीट होने लगती है, और अगर उसको फिर से रिजुविनेट नहीं किया गया तो वो एंड हो जाता है। पर अगर उसको रिजुविनेट कर लिया, पुनर्जीवित कर लिया, तो फिर वो चक्र पुनः प्रारंभ हो जाता है। तो यही इन चक्रों के साथ भी है। जो भी चक्र चलते हैं प्रकृति में, जैसे पानी का चक्र है, ऋतुओं का चक्र है, रात और दिन का चक्र है, हमारे जीवन और मृत्यु का चक्र है, कोई भी चक्र हम देखें, पानी बरसता है तो समुद्र से, सूर्य की गर्मी से पानी भाप बनकर बादल का रूप लेता है, वो बादल कहीं पहाड़ों में टकराते हैं और शुद्ध पानी बरसता है। जो पानी बरसता है वो एकदम शुद्ध पानी होता है, जो झरने के रूप में बहता है, और धीरे धीरे वो मैदान में नदी का रूप ले लेता है। तो वो नदी जब शहरों गांवों से गुजरती है तो लोग उस पानी को यूज करते हैं, तो उसमें गंदगी पड़ने लगती है, और जब वो नदी फिर से समुद्र तक पहुंचती है, अब नदी कहाँ गिरती है? समुद्र में, तो वो उसका एंड पॉइंट है, वहां पर वो सबसे गंदा जल होता है। लेकिन फिर से सूर्य क्या करता है? रिजुविनेटिंग फैक्टर कौन है? सूर्य। वो फिर से शुद्ध पानी को भाप बनाकर बादल बना देता है और गंदगी सारी नीचे रह जाती है, और इस तरह से ये पानी का चक्र भी प्रकृति में चलता रहता है। ऐसे ही जो रात और दिन का चक्र है, दिन की शुरुआत होती है प्रातः काल, शुद्ध सात्विक समय है, इसीलिए मनुष्य भक्ति पूजा पाठ कब करते हैं? सुबह सुबह के समय पर, ब्रह्म मुहूर्त के समय या सुबह के समय करते हैं, और कोई बुरा विचार आ जाए ना उस समय तो सोचते हैं ये कब, ये क्यों इस समय मुझे आ गया, अच्छा नहीं लगता है उस समय अगर कोई बुरा विचार मन में आ जाए। फिर दिन भर हम काम करते हैं, अपनी एनर्जी को हम यूज कर रहे हैं, तो शाम होते होते रात होते होते तक हम थक चुके होते हैं, तो अब क्या चाहिए हमें? विश्राम। तो रात को हम सोते हैं और फिर से हम अपनी एनर्जी को रिगेन करते हैं। लेकिन जो रात्रि का समय है वो कौन सा समय है? तमोप्रधान। तमोप्रधान समय का मतलब जितने भी बुरे काम होते हैं या गलत काम होते हैं, मेजॉरिटी कौन से टाइम होते हैं? कोई जुआ खेलेगा, शराब पिएगा, चोरी करेगा, डकैती करेगा या और भी गलत काम करेगा, कौन सा टाइम चूज करते हैं? तो वो कौन सा समय हो गया, है ना? तो वो लास्ट समय दिन का, और फिर जब सुबह उठते हैं सूर्योदय से, फिर से नया दिन, नया चक्र हम शुरू करते हैं। तो ये भी चक्र देखते हैं हम। और फिर हमारे जीवन का चक्र, एक बच्चा जन्म लेता है, बिल्कुल प्योर होता है, उसको भगवान का रूप मानते हैं, उसको कोई बुराई का ज्ञान नहीं है। तो एक बच्चा सबका प्यार खींचता है क्योंकि वो इतना प्योर है, लेकिन जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो फिर बुराइयों का ज्ञान होने लगता है उसे, और न सिर्फ ज्ञान होता है, उसे वो यूज भी करने लग जाता है, तो उसकी शक्तियां क्षीण होने लगती हैं। तो युवावस्था, और युवावस्था में बुराइयों के अनुभवी होने लगते हैं और तेजी से शक्तियां जाती हैं, तो प्रौढ़वस्था आ जाती है, और प्रौढ़वस्था तक आते आते कोई बुराई नहीं बचती जिसका अनुभव जीवन में न किया हो, तो और फिर शक्तियां क्षीण होती हैं, वृद्धावस्था आ जाती है। अब इस चक्र को हम रिवर्स नहीं कर सकते, यानी वृद्धावस्था को हम बाल्य अवस्था में नहीं ला सकते, तो इसका अंत हो जाता है, यानी मृत्यु होती है, और फिर आत्मा नया जन्म लेकर के फिर से नया जीवन चक्र शुरू करती है। तो ऐसे ही ये सृष्टि का चक्र है कि ये सृष्टि का चक्र भी अपनी प्रारंभिक अवस्था में बहुत शुद्ध है, श्रेष्ठ है, सत्व प्रधान है, शक्तिशाली है। जो भी आत्माएं हैं सृष्टि की आदि काल में, जिसे हम सतयुग का समय कहते हैं, और फिर धीरे धीरे जब समय गुजरता है तो युग बदलते हुए आत्मा कहाँ तक पहुंच जाती है, इस चक्र के अंतिम समय तक आने पर आत्मा पूरी तरह से पतित, तमो प्रधान, कमजोर पड़ जाती है, और फिर से ये चक्र तभी पुनरावृत होगा, यानी कलयुग के बाद सतयुग तभी आएगा जब फिर से इसको कोई रिजुविनेट करे। तो ये चक्र को स्वास्तिक से दिखाया है, सृष्टि चक्र को हम स्वास्तिक से दिखाते हैं। तो स्वस्तिक एक ऐसा चिन्ह है हिंदू धर्म में जो शुभ कार्य या मंगल कार्यों के लिए हम प्रयोग करते हैं, और इसमें चार भुजाएं हैं जो क्लॉकवाइज घूमती हैं। ये इसीलिए सृष्टि चक्र का प्रतीक है, और ये चार बराबर बराबर भागों में बटा हुआ है, और ये संस्कृत के सुअस्ति से आया है। स्वस्तिक जो है संस्कृत में सु का अर्थ होता है शुभ और अस्ति माना है। तो इसमें जो भी काल चक्र में घटनाएं घटती हैं वो हमारे लिए शुभ हैं, पर शुभ होती हैं हमेशा? कभी कभी तो जीवन में इतना बुरा होता है कि हम सोचते हैं क्या मेरा ही भाग्य ऐसा है, क्या मेरे साथ ही ऐसा होना था या हो रहा है। तो हमेशा सभी घटनाएं अच्छी हों ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी राज ये है कि उसमें कहीं ना कहीं हमारा भला जरूर होता है, भले बुरा हो रहा है लेकिन उसमें भी कहीं हमारा भला होता है। तो एक ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ बोध कथाएं कहते हैं ना, तो ऐसे एक बोध कथा है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था, और वो उसको हमेशा अपने साथ रखता था और उसकी सलाह लेता था। तो एक बार राजा की उंगली कट गई, तो मंत्री साथ में था तो उसने मंत्री को दिखाया, मंत्री जी मेरी उंगली कट गई। तो मंत्री तो ज्ञानी था, उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो उसको गुस्सा आया, मेरी उंगली कट गई और ये कह रहा है अच्छा हुआ, इसका मतलब अभी मंत्री विश्वास पात्र नहीं रहा मेरा। और उसने गुस्से में आके उसको जेल में बंद करा दिया। अब वो राजा को शिकार खेलने का शौक था, तो थोड़े दिनों के बाद वो शिकार खेलने के लिए जाता है जंगल में, और शिकार का पीछा करते करते घने जंगल में निकल जाता है। अब ऐसे ही होता है कई बार। अब वहां पर आदिवासी कबीले के लोग रहते थे, और वो कबीले वाले किसी मनुष्य की देवी को बलि चढ़ाने के लिए ढूंढ रहे थे, अपनी देवी को उन्हें प्रसन्न करना था। तो ये राजा पकड़ा जाता है, और राजा को पता चलता है मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा है, तो वो समझाने की कोशिश करता है मैं राजा हूँ मेरी बलि चढ़ाओगे? तो वो कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है, राजा जैसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न हो जाएगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वो ले जाते हैं उसको मंदिर में, और वहां देखते हैं पुजारी, पुजारी के अनुसार जो बलि है वो संपूर्ण होनी चाहिए, उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, पर उसकी तो उंगली कटी हुई थी। तो फिर उसने कहा कि ये बलि तो देवी स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो, कोई दूसरा मनुष्य ढूंढो। तो राजा जो है छूट जाता है, और छूट कर जब वो अपने राज्य लौट रहा होता है तो उससे मंत्री की बात याद आती है, जो हुआ वो अच्छा हुआ। उसने सोचा सचमुच आज उंगली कटी हुई थी, इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला नहीं था। वो पहुंचता है राज्य में, सीधा जेल में जाता है और मंत्री को बाहर करवाता है और क्षमा मांगता है, कहता है मंत्री जी आज आपकी बात समझ में आ गई मेरे को। वो सारी घटना सुनाता है और फिर कहता है लेकिन एक सवाल है मेरा, मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ क्योंकि मैं आपके साथ जाता हूँ, आज मैं जेल में था इसीलिए आपके साथ नहीं था, अगर मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय किसकी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो संपूर्ण था तो हम दोनों ही बच गए। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बहुत बुरी, लेकिन उसमें दोनों का ही भविष्य में भला छुपा हुआ था। तो हमें कई बार उस समय नहीं समझ में आता, वो भविष्य के पर्दे में होता है, बाद में समझ में आता है कि सचमुच इसके कारण ही मेरे जीवन में ये चेंज आया, या हमने ये डायरेक्शन ली जो आज हम लाइफ में इतना प्रोग्रेस कर रहे हैं। कुछ भी, कभी किसी को ऐसा फील हुआ है, आप सब यहाँ हैं, कि हाँ उस समय हमें लगा ये तो बहुत बुरा हो गया, क्योंकि हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो घटता ही रहता है, लेकिन बाद में लगा कि नहीं ये अच्छा हुआ, तो हाथ उठा सकते हैं। देखो कितने लोग हैं, 15-20 लोग तो यही हैं। तो इसका मतलब हर बात के पीछे कहीं ना कहीं हमारा भला छुपा हुआ है। तो ये इसीलिए स्वास्तिक के रूप में इसको दिखाते हैं, और स्वास्तिक के चार बराबर भाग हैं, इसीलिए ये समय को चार बराबर भागों में बांट रहा है, 5000 साल। तो एक युग 1250 वर्ष का है, हर युग 1250 वर्ष का है, और जो स्वास्तिक की भुजा की डायरेक्शन है वो उस युग में आत्मा की स्थिति का प्रतीक है। तो जो पहला युग है वो पहला युग कहलाता है सतयुग। आत्मा परम धाम से इस सृष्टि पर उतरती है, सभी आत्माएं कहाँ रहती हैं, परम धाम में। तो ये पहला युग प्रारंभ होते ही आत्मा परम धाम से सृष्टि पर आती है, जो भी इस योग्य हैं, और वो सब आत्माएं क्योंकि श्रेष्ठ हैं, जैसे बताया श्रेष्ठ हैं, पावन हैं, सतो प्रधान हैं, तो वो कैसी हैं, सर्वगुण संपन्न हैं, 16 कला संपूर्ण हैं, संपूर्ण निर्विकारी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम है, और इनको हम देवी देवता कहते हैं, वो साधारण मनुष्य नहीं है, देवी देवता कुल है ये। और श्री कृष्ण का जन्म होता है और उसके साथ साथ अन्य देवी देवताओं का भी जन्म होता है, और वही श्री कृष्ण बड़े होकर के श्री नारायण कहलाते हैं, जिन्हें हम सत्य नारायण भी कहते हैं, क्योंकि वो सतयुग में हुए, और किसी भी देवता के आगे हम सत्य शब्द नहीं लगाते, केवल श्री नारायण के आगे ही हम सत्य शब्द का, कोई ना कोई कोई सत्य नारायण की कथा भी करते हैं। तो वो सत्य नारायण सतयुग में हुए, और सर्व गुण संपन्न माना जो स्वास्तिक की भुजा है वो राइट एंड अप है ना, आप देख रहे हैं स्वास्तिक में राइट साइड में, तो राइट साइड शुभ समय का प्रतीक है। राइट शुभ कार्यों के लिए हम कौन सा हाथ प्रयोग करते हैं, राइट हैंड प्रयोग करते हैं, तो संसार का वो शुभ समय है राइट हैंड। और दूसरा ये हाथ हम इस पोजीशन में तब ले जाते हैं जब किसी को हम दुआ देते हैं या आशीर्वाद देते हैं, तो ये परमात्मा से आशीर्वाद प्राप्त आत्माएं हैं, इसीलिए संपन्न है। 16 कला संपूर्ण है, यानी उनकी जो कलाएं हैं, उनकी जो शक्तियां हैं वो पूर्ण विकसित हैं। जैसे चंद्रमा, जब पूर्णिमा का चांद है तो हम कहते हैं 16 कला से चंद्र खिला है, कोई बात 100% सच है तो हम कहते हैं 16 आने सच है, और पूरा श्रृंगार किया है तो क्या कहते हैं 16 श्रृंगार। तो कोई 16 अंक की बात नहीं है ना, 16 जो है वो पूर्णता का प्रतीक है, तो आत्मा वहां पूर्ण है, फिर संपूर्ण निर्विकारी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये जो विकार हैं या इनके भी साथी हैं, इनसे आत्मा पूरी तरह से मुक्त है, इसलिए वहां कोई अपराध नहीं होता। क्योंकि अपराध किसकी वजह से होते हैं? विकारों की वजह से होते हैं। आज काम विकार है दुनिया में, इसीलिए महिलाओं के प्रति या जो भी दुष्कर्म की घटनाएं होती हैं। आज क्रोध है इसलिए हिंसा हत्या होती है। आज लोभ है इसीलिए रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार फैला हुआ है। आज मोह है इसीलिए भाई भतीजावाद है। अहंकार है इसीलिए शोषण होता है। तो ये सब विकार ही नहीं है तो अपराध नहीं है। तो वहां पर ना तो कोर्ट चाहिए, ना जेल चाहिए, ना पुलिस चाहिए, ना जज चाहिए, ना वकील चाहिए। इन सब की ये डिक्शनरी ही नहीं होती, ये शब्द ही नहीं होते, क्योंकि इनकी आवश्यकता ही नहीं है। तो वो संपूर्ण निर्विकारी समय है और वो सर्व प्राप्ति संपन्न है, यानी तन मन धन संबंध, ये चार भाग्य मनुष्य के जीवन में गाए गए हैं। ये चारों भाग्य उन्हें पूर्ण प्राप्त हैं। तन का भाग्य है, तन का भाग्य है स्वस्थ और सुंदर तन हो। कहते हैं पहला सुख निरोगी काया। कौन सा सुख माना जाता है? स्वस्थ हो मनुष्य, इससे बड़ा सुख उसके जीवन में कुछ नहीं होता। आज के मनुष्य तो पूर्ण स्वस्थ हो ही नहीं सकते, कोई ना कोई बीमारी लगी ही रहती है। तो वहां पर संपूर्ण स्वस्थ हैं, लंबी आयु जीते हैं, 150 वर्ष की आयु है। देवी देवताएं कभी बीमार नहीं पड़ते, इसलिए वहां डॉक्टर हॉस्पिटल दवाइयों की जरूरत ही नहीं है, कोई वैद्य भी नहीं चाहिए, कोई नहीं, क्योंकि कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि सत्व प्रधान प्रकृति के तत्वों से वो शरीर बना है। और मन से भी वो सदा प्रसन्न चित्त हैं, शांत चित्त हैं, हर्षित चित्त हैं। आज हम यादगार देवी देवताओं के मंदिर बनाते हैं ना, है मंदिर की नहीं है, मैं समझती हूँ दुबई में भी बहुत अच्छा मंदिर बना है, है ना। तो मंदिर क्यों बनाते हैं? वो होकर के गए हैं। आज अगर हम महात्मा गांधी का स्टैचू बनाते हैं या सरदार वल्लभ भाई का वो स्टैचू बनाते हैं, तो ऐसे व्यक्ति इस दुनिया में होकर के गए तभी हम बना रहे हैं। उनको याद हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो होके गए और उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया जो उनको याद किया जाए। तो देवी देवताएं ऐसे मनुष्य थे तो वो मनुष्य ही, लेकिन वो इतने दिव्यता पवित्रता संपन्न थे कि आज हम मंदिर बनाकर उनकी पूजा करते हैं। साधारण रूप से हम उन्हें याद नहीं करते। और मंदिरों में हम उनके दर्शन करने क्यों जाते हैं? क्यों जाते हैं? क्या मिलता है? हाँ जी बोलिए, जाते तो है ना। मैं नहीं समझती कोई नहीं जाता होगा मंदिर में। हाँ, शांति मिलती है और आशीर्वाद मिलता है और जी वाइब्रेशन मिलते हैं। तो जब भी हम वो दर्शन करते हैं, दर्शन ही करते हैं ना, और कितनी देर, कुछ मिनट ही खड़े होंगे मुश्किल से उस मूर्ति के सामने, लेकिन वो सुख मिलता है हमको, है ना। जैसे कहा वो वाइब्रेशंस मिलते हैं, माना वो शांति का अनुभव हमें उनके दर्शन मात्र से होता है। और आशीर्वाद मिलता है, कोई भी देवता के सामने खड़ा होगा ना, बिना मांगे नहीं आएगा, देवता माना ही देने वाला, तो मांगेगा जरूर। हाँ, भले ही संसार की कोई भी मेरी जरूरत हो, किसके आगे बोलेंगे जाकर? तो मतलब जो संपन्न है वो ही देगा ना, जिसके पास नहीं है वो दे सकता है क्या? तो फिर हम आज भी जो उनकी जड़ मूर्तियां हैं, वो भी हमें सुख का, शांति का, प्रेम का, दिव्यता का अनुभव कराती हैं। तो जब वो चैतन्य में रहे होंगे तो कितना संपन्न होंगे इन गुणों में, हम समझ सकते हैं। ऐसे ही उनके जो धन की बात है, वो धन से भी वैभवशाली हैं, माना अथाह धन। इसको कहते हैं सोना चांदी मिट्टी के समान होता है, इसीलिए वहां सोने चांदी के महल बनाते हैं। आज तो हम सीमेंट के और ईंटों के मकान बनाते हैं, लेकिन देवी देवताओं के महल कैसे होते थे? सोने चांदी के महल ना, सोने की चिड़िया भारत कभी कहलाता था, जैसे सुनते हैं हम हिस्ट्री में, तो ये वो समय था। और यथा राजा तथा प्रजा, यानी राम राजा, राम प्रजा, राम साहूकार है, बस्से नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। तो ये वो समय था जब राजा और प्रजा, कोई गरीब नहीं, प्रजा में भी कोई गरीब नहीं, और सब एक समान, माना धन के मामले में जो थे सभी धनी थे, अथाह धन के मालिक थे। और आज भी अगर हम मंदिरों में भी देखते हैं, जड़ मूर्तियां हैं, चैतन्य देवताएं तो नहीं है, तो वो जड़ मूर्तियों को भी धन का भाग्य है। जितना चढ़ावा वहां आता है, जितनी कमाई, जो भी मुख्य मंदिर है आप देखेंगे, कोई एक बड़ा बिजनेसमैन भी नहीं कमा सकता जितना वो जड़ मूर्ति की कमाई होती है। भारत में ऐसे बहुत से मंदिर हैं, जैसे तिरुपति बालाजी का मंदिर है, श्रीनाथ द्वारा का मंदिर है, शिरडी साईं बाबा का मंदिर है, जो भी, मतलब ये जो मंदिर बने हुए हैं, और उनका जो श्रृंगार होता है, माना सीधा पूरा गहनों से, सच्चे गहनों से, और कई मंदिर तो सोने की जड़त होती है, उनका जो गर्भगृह होता है वो सोने या चांदी से बना हुआ होता है, देखा होगा ना। तो जड़ मूर्ति भी इतनी संपन्न है धन से, है ना, भले मंदिर गांव में बना होगा लेकिन महल जैसा बनाएंगे, भव्य बनाएंगे। लोग साधारण घरों में रहते हैं लेकिन मंदिर कैसे बनते हैं, तो आप समझ सकते हो जब वो चैतन्य में होंगे तो कितने कितने धनवान हैं वो, जो जड़ मूर्ति ही हमें उसका एक आभास दिला रही है। तो सतयुग में जो है वो एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत होता है, यानी श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही राज्य होता है, विश्व ही भारत होता है, और ये अखंड अटल, माना एक धर्म एक राज्य, वो आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है उस समय, और कोई धर्म इस दुनिया में उस समय नहीं होता। तो ये वो समय था संसार का, जिसे हम स्वर्ग का समय कहेंगे, जिसे हम हेवन कहते हैं, बहिष्ट कहते हैं, तो ऐसा समय भी इस दुनिया में था। फिर उसके बाद दूसरा युग आया, 1250 वर्ष के बाद जो स्वस्तिक की भुजा है वो राइट एंड डाउन है। अभी भी संसार में शुभ समय है लेकिन थोड़ा सा कमी आ गई, डाउन का मतलब थोड़ा सा कमी आ गई। तो क्या कमी आ गई, आत्मा जो 16 कला संपूर्ण थी वो 14 कला हो गई, क्योंकि इतना समय आत्मा ने जन्म लिया। सतयुग में 8 जन्म होते हैं, 8 डिनाइस्टी चलती है, तो 8 जन्म लेने से आत्मा की शक्ति थोड़ी क्षीण हो गई, तो वो थोड़ी सी उसमें त्रुटि आ गई। त्रुटि भी संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ होता है ऐसी कमी जो है लेकिन दिखाई नहीं देती। जैसे चंद्रमा जो है, जब वो पूरा पूर्णिमा का चांद है, उसके नेक्स्ट डे उसकी एक लकीर कम हो जाती है लेकिन फिर भी तो पूरा चांद दिखाई देता है, लगता तो पूरा ही चांद है। ऐसे ही आत्मा भी, आत्मा अभी भी संपूर्ण है लेकिन फिर भी हल्की सी उसमें कमी है, और वो कमी के कारण युग बदल जाता है। और यहाँ पर डिनाइस्टी भी चेंज होती है, श्री नारायण की डिनाइस्टी से श्री राम की डिनाइस्टी आ जाती है, और श्री राम चंद्र जी कहते हैं हम उनको, यहाँ से चंद्रवंश शुरू होता है, उनको हम सत्य नारायण कहते हैं और श्री राम को हम कहते हैं श्री राम चंद्र जी। तो यहाँ 12 जन्म होते हैं, क्योंकि एक युग की आयु थोड़ी सी कम होती है, एक जन्म की आयु थोड़ी कम होती है, 125 वर्ष, इसलिए जन्म बढ़ जाते हैं, 12 जन्म होते हैं त्रेता युग में, बाकी सब प्राप्तियां समान है। तन मन धन संबंध सब में संपन्न है, अभी संपूर्ण भाग्यवान है, और वहां भी एक धर्म एक राज्य एक भाषा एक कुल एक मत है, और ये भी संसार का स्वर्ग का समय है, और ये 2500 साल तक इस दुनिया में स्वर्ग रहता है। अब 2500 साल के बाद स्वस्तिक की भुजा कहाँ टर्न हो जाती है, लेफ्ट टर्न हो गई। तो अब लेफ्ट टर्न माना अशुभ समय की शुरुआत, संसार में अशुभ समय शुरू होता है और आत्मा की कलाएं भी, क्योंकि आधा समय गुजर गया तो आधा समय गुजरने के कारण कलाएं आधी रह जाती हैं, आठ कला ही रह जाती है, तो आठ कला की कमी आ जाती है उसके अंदर, तो उसके कारण विकारों की प्रवेशता शुरू हो जाती है। वो कमियां क्या हैं? विकार। तो सबसे पहले जो विकार आता है वो आता है देह अभिमान। तो देह अभिमान माना दैहिक दृष्टि होने लगती है। देवी देवताएं आत्माभिमानी थे, लेकिन जैसे ही द्वापर युग में आत्मा प्रवेश करती है, देह अभिमान में आने के कारण देह को देखते हैं, तो देह के स्तर पर तो अनेक अंतर है, कोई ऊंच है, कोई नीच है, कोई राजा है, कोई रंक है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, कोई काला है, कोई गोरा है, माना भेदभाव पूर्ण व्यवहार। और जब भेदभाव पूर्ण व्यवहार होता है तो मनुष्य से थोड़े पाप होने लगते हैं, तो पाप कर्मों का फल सामने आने लगता है। अभी तक सतयुग त्रेता में तो विकार ही नहीं है, तो पाप कर्म भी नहीं है, तो दुख भी नहीं है। और अब क्या हुआ, आत्मा को दुख हुआ तो लगा कुछ गलत हो रहा है। जैसे हम स्वस्थ हैं तो सामान्य है, लेकिन मेरा सिर दर्द हो रहा है, मुझे बुखार आ गया, मुझे सर्दी हो गई, तो हम क्या सोचते हैं, बीमार हो गए। अब किसकी जरूरत है, किसकी जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है। तो डॉक्टर कब याद आया, जब बीमार हुए, तो हम दवाई लेकर के फिर से स्वस्थ होंगे, क्योंकि स्वस्थ रहना नॉर्मल है, बीमार होना एबनॉर्मल है। तो ऐसे ही दुख एबनॉर्मल है, सुखी रहना नॉर्मल है। तो दुख होते ही भगवान कौन याद आया आत्मा को, कौन दुख दूर करता है, कौन दूर करता है, भगवान। तो यहां से ही भक्ति पूजा पाठ ईश्वर को याद करना जो शुरू होता है वो द्वापर युग से ही शुरू होता है। तो वही जो स्वयं थे पूज्य थे, अब पुजारी बन जाते हैं। पहले परमात्मा शिव की निराकार भगवान की पूजा शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे अपने ही स्वरूप, क्योंकि पूर्वज हो गए तो वही उनकी पूजा करना शुरू करते हैं, तो पूज्य से पुजारी बन जाते हैं। भगवान हमारा पिता है, उसको हम याद कर रहे हैं, तो दुनिया में अभी इतना पाप नहीं है कि उसको खुद आना पड़े, तो वो क्या करते हैं, धर्म पिताओं को भेजते हैं। अलग अलग स्थान पर अलग अलग धर्म पिता आकर के धर्म की स्थापना करते हैं। तो सनातन धर्म के बाद जो नेक्स्ट धर्म आया दुनिया में वो था इस्लाम। आज से 2500 साल पहले इब्राहिम आए और उन्होंने इस्लाम धर्म की स्थापना की। उन्होंने देखा कि उस समाज में कोई नियम व्यवस्था नहीं है, तो उन्होंने 10 कमांडमेंट्स दिए, उन्होंने उन नियमों का ज्ञान दिया। आज तक भी जो इस्लाम धर्म का पालन करने वाले हैं वो अपने नियमों में बहुत पक्के होते हैं। तो ये धर्म स्थापन हुआ। फिर नेक्स्ट आए महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध आए आज से 2250 साल पहले और वो आए ईस्ट में, और उन्होंने देखा कि उस समाज में, क्योंकि अब देवी देवताएं तो नहीं रहे दुनिया में, वो क्या कहलाने लगे, अब उनमें देवी देवताओं जैसे लक्षण ही नहीं थे तो उनको देवी देवता तो नहीं कह सकते, तो वो हिंदू कहलाने लगे। तो उन्होंने देखा वो हिंदू धर्म में या वैदिक धर्म में बहुत कर्म कांड अंधविश्वास बढ़ रहा है, लोग नर बलि पशु बलि देने लगे हैं, राजाएं चक्रवर्ती बनने के लिए एक दूसरे पर आक्रमण करते हैं, निर्दोष मारे जाते हैं, तो हिंसा बढ़ रही है। तो उनके सारे उपदेश इसी के रहे कि कैसे कर्म कांड से मुक्त होकर के श्रेष्ठ कर्म करें और करुणा मैत्री भाव सत्य अहिंसा का उपदेश महात्मा बुद्ध ने दिया और पूरे पूर्वी संसार में ये धर्म फैला। आज भी फार ईस्ट के जितने भी देश हैं वो सब बौद्ध धर्म को मानने वाले हैं, चाहे चीन है, जापान, कोरिया, ताइवान, हांगकांग, थाईलैंड, बर्मा, श्रीलंका, वियतनाम, कंबोडिया, ये सब कौन से देश हैं, सब बौद्ध धर्म को मानने वाले देश हैं। फिर महात्मा बुद्ध के पश्चात आए ईसा मसीह, आज से लगभग 2000 साल पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में, क्योंकि वहां दुनिया का विस्तार होने लगा तो देखा वहां लोगों में झूठ, कपट, वैर भाव ये ज्यादा बढ़ है आपस में। तो उनका जो संदेश था, गॉड इज लव, गॉड इज ट्रूथ, लव दाई नेबर एज यू लव योर सेल्फ, अपने पड़ोसी को भी उतना ही प्यार करो जितना आप अपने आप को प्यार करते हो। और फिर ईसा मसीह के द्वारा जो ये कृष्ण धर्म है पूरे वेस्टर्न वर्ल्ड में फैला, और आज भी जितना पश्चिमी देश हैं वो सब ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं। दुनिया का सबसे बड़ा धर्म इस समय एट प्रेजेंट ईसाई धर्म है। तो चाहे वो यूरोप है, अमेरिका, जितने भी अमेरिकाज हैं वो सब कौन से धर्म को मानते हैं? कृष्ण धर्म को मानते हैं। फिर मोहम्मद साहब आए आज से 1400 साल पहले, और उन्होंने इस्लाम को रिफॉर्म करके फिर से उसे सारे मिडिल ईस्ट में उसको फैलाया। तो जितना भी मिडिल ईस्ट है वो सब मुस्लिम धर्म को मानने वाले, चाहे वो अरब हैं या फिर साथ में ओमान है, कतर है, कुवैत है, टर्की, बहरीन, सूडान, मिस्र, ये सब कौन से हैं? सारे मिडिल ईस्ट में इस्लाम धर्म फैला और पूरा विश्व अनेक धर्मों में विभाजित हो गया। और क्या हो गया दुनिया में? अनेकता हो गई। अनेकता है, मत मतांतर, तो फिर लड़ाई झगड़े शुरू हो गए। तो धर्म तो हुए शांति के लिए, लेकिन दुनिया में क्या फैल गई? अशांति फैल गई। तो कौन सा युग आ गया? अब समय की गति के अनुसार आत्मा की शक्तियां भी क्षीण होती जा रही हैं, आत्मा भी कमजोर होती जा रही है, उसमें भी विकार बढ़ते जा रहे हैं। तो फिर कलयुग तक जो चौथा युग है, स्वास्तिक की भुजा अप टर्न हो जाती है। और स्वास्तिक की भुजा अप टर्न हुई, ये पोज हम कब लेते हैं हाथ का? ये कब लेते हैं? कहते हैं इसने मेरे ऊपर हाथ उठा दिया, मतलब मार दिया, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो इसका मतलब कलयुग में पहुंचकर ये कलह क्लेश का युग हो जाता है। आत्माएं कलाहीन हो गई, माना उसमें अब कोई कला नहीं, तो विकार प्रधान हो गए। विकार प्रधान माना काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार प्रधान है उसके अंदर। तो दुनिया में पापाचार, दुराचार, अत्याचार, अनाचार सब फैलने लगता है, और कोई घर ऐसा नहीं जहां लड़ाई झगड़ा ना होता हो, कोई देश ऐसा नहीं जहां शांति या लड़ाई ना होती हो। है कोई ऐसा? आज कोई बता सकता है कि मेरे घर में लड़ाई झगड़ा नहीं होता है? तो ये कलयुग ऐसे शुरू होता है। तो इसको कहा धर्म ग्लानी का समय। तो जो भी हमारे धर्म पिता हुए, जो द्वापर युग में धर्म पिता आए, उन्हें आने वाले समय का आभास था। तो उन्होंने मनुष्यों को सावधान किया कि जब कलयुग आएगा तो वो ऐसा समय होगा। तो उन्होंने निशानियां बताई, जैसे गीत हम सुनते हैं, हे रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। इसमें पूरी कलयुग की निशानियां बताई हैं, लेकिन मुझे तो पूरा गीत याद नहीं है, पर दो लाइन में भी मीनिंग है। कलयुग में हंस चुगेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा, माना जो हंस प्रकृति के लोग हैं, जैसे हंस पक्षी को सदाचारी मानते हैं, वो दूध का दूध पानी का पानी कर देता है और मोती चुगता है। लेकिन कलयुग में जो सदाचारी लोग होंगे, ईमानदार लोग होंगे, वो अभाव में जिएंगे, उनको ठीक से खाने को भी नहीं मिलेगा। और जो कौवा प्रकृति, कौवा कौवे को जो है वो हेरा फेरी वाला बेईमान ऐसे मानेंगे, तो फिर ऐसी प्रकृति के जो लोग होंगे वो संपन्न होंगे। मोती खाएगा माना, कौवा मोती खाएगा माना, वो संपन्न और समृद्ध होंगे। तो आज हम देखते हैं, और किसी को अगर हम सच्चाई ईमानदारी की बात करें तो कहेंगे बहन जी कौन से जमाने की बात कर रहे हो। अगर हम अब सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे तो हम अपने परिवार को भी नहीं पाल सकते, नहीं चला सकते। तो कलयुग में मूल्य बदल जाते हैं, जिन मूल्यों से मनुष्य को महान माना जाता है कलयुग में उन्हीं मूल्यों से उसे मूर्ख माना जाता है। जो सच्चाई, ईमानदारी, त्याग, सेवा भावना मनुष्य को महान बनाते हैं, वो कहेंगे अरे ये तो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकते, इनका कुछ नहीं होने वाला। जो इस रास्ते पर चलते हैं उनके लिए फिर ऐसा कहते हैं। फिर गुरु नानक देव जी ने, कलयुग में सिर्फ एक ही धर्म पिता हुए गुरु नानक देव जी ने, उन्होंने कहा कलयुग वो समय होगा जब गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, अन्न पूड़ियों में बिकेगा और दूध बॉटल में बिकेगा, सिद्धांत विहीन राजनीति होगी, मानवता विहीन विज्ञान, विवेक शून्य आनंद। हम देख रहे हैं सब है। उन्होंने कहा गाय विष्ठा में मुंह डालेगी, माना गाय कचरे में मुंह डालेगी और कुछ भी खाएगी। तो इसीलिए आज गाय कुछ भी खाती है तो लोग कहते हैं गाय का दूध ही मत पियो ना, क्योंकि पता नहीं वो क्या खाती है और उसको क्या मिलता है। तो फिर ये भी समय है। फिर कहा कि अन्न पूड़ियों में बिकेगा, पूड़ियां माना उनकी भाषा में अन्न पैकेट्स में आ जाएगा। तो आज सारा अन्न, सारा अनाज, सारे खाने की वस्तुएं पैकेट्स में आती हैं, आती है नहीं आती है, तो वो समय भी आ गया। फिर कहा दूध बॉटल में बिकेगा, दूध तो क्या पानी भी बॉटल में आ गया। और फिर कहा सिद्धांत विहीन राजनीति, राजनेताओं के कोई सिद्धांत नहीं होंगे, वो कहेंगे कुछ और करेंगे कुछ, दोहरी नीति होती है उनकी ना, पब्लिक के सामने कुछ और होते हैं और काम कुछ और करते हैं। फिर मानवता विहीन विज्ञान, विज्ञान मनुष्य के अंदर मानवता नहीं लाएगा, विज्ञान से मनुष्य में अहंकार का जन्म होगा, वही देख रहे हैं हम, और वो अहंकार उसको विनाश की ओर ले जा सकता है। फिर कहा विवेक शून्य आनंद, आज का मनोरंजन कैसा है, आज किस स्तर का मनोरंजन करता है मनुष्य, उसका कोई विवेक का इस्तेमाल उसमें नहीं है। तो ये सारी निशानियां हमें दिखाई दे रही हैं। और एक अंतिम निशानी उन्होंने कहा कि ये वो समय होगा जब एक कुएं का पानी चार कुएं में समाएगा, चार का एक में नहीं समाएगा ना। उनका भाव था कि एक माता पिता चार बच्चों की पालना करेंगे, उन्हें योग्य बनाएंगे, वही चार बच्चे जब बड़े हो जाएंगे तो अपने माता पिता को नहीं पाल सकेंगे। तो वो भी समय आ गया। आज क्यों ओल्ड एज होम बनते हैं, क्यों वृद्धाश्रम बनते हैं, क्योंकि बच्चे अपने माँ बाप को नहीं पाल सकते ना। भारत में तो माँ बाप को बहुत ऊंची नजर से देखते हैं, तो भी भारत में भी वृद्धाश्रम बनने लगे हैं। कहते हैं कि मदर टेरेसा क्यों बनी, उसका कारण यही था। वो एक साधारण नन थी, एक मिशनरी स्कूल में पढ़ाती थी कलकत्ता में, और वो अपने जो साथी नन्स थी उनके साथ मॉर्निंग वॉक कर रही थी, तो उनको एक करहाने की आवाज सुनाई दी। तो इधर देखा तो कोई नहीं दिखा, फिर दोबारा आवाज आई तो उनको लगा कोई तो है, तो थोड़ा ढूंढा आवाज की तरफ, गए तो देखा एक कचरे के डब्बे में से आवाज आ रही है। तो कचरे के डब्बे में देखा तो एक हड्डियों का ढांचा बना हुआ एक वृद्ध जो है वो उसमें था। तो उन्होंने उसको पूछा तुम यहाँ कैसे आ गए, तो उसने कहा मेरा बेटा मरने के लिए छोड़ गया है, लेकिन मृत्यु भी ऐसी है जो मुझे नहीं आती है। तो देखा वो उसको कोड़ हो रखा था, कोड़ में ना मनुष्य के हाथ पांव गल जाते हैं और बहुत बदबू भी आ रही थी। तो उन्होंने उनको निकाला, उसके साथियों से के साथ उसको डब्बे से निकाला, लिखे गए अपने प्लेस पे, और फिर उसकी सारी मरम पट्टी, डॉक्टर को बुलाया, इलाज शुरू करवाया। वो तो ज्यादा नहीं जिया, दो चार दिन में ही उसकी मृत्यु हुई, लेकिन उसने मरते समय ये कहा उनको कि सारी जिंदगी मैंने उपेक्षित जीवन जिया, लोगों ने मेरे से घृणा की, लेकिन मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि मरते समय कम से कम वो मुझे ऐसे हाथों में ले आया जहां मुझे प्रेम मिला और करुणा मिली, तो मैं समझता हूँ मेरा आगे का जन्म जरूर बेहतर होगा। तो फिर उनके मन में आया कि ऐसे लोगों को मेरी जरूरत है, मुझे अपना जीवन ऐसे लोगों की सेवा में ही बिताना है, और इसीलिए फिर उन्होंने कोड़ियों के लिए एक ट्रस्ट बनाया। हालांकि उनको सहयोग भी नहीं मिला अपने उससे, जहां वो कार्य करते थे, लेकिन वो संकल्प कर लिया उन्होंने और फिर जीवन पर्यंत उन्होंने कोड़ियों के लिए काम किया और इसी के लिए उन्हें फिर नोबल प्राइज भी मिला, वो हम सब जानते हैं। तो आज वो समय सब अति में है और अति जहां है वो अंत का संकेत होती है। कहते हैं पीक ऑफ नाइट इज द इंडिकेशन ऑफ कमिंग डे, रात्रि का चरम होना ही आने वाले दिन का संकेत है। लेकिन दिन की शुरुआत तो बिना सूर्योदय के नहीं हो सकती, तो यहां भी जब कलयुग अपने चरम पर है, अपने अंत तक पहुंच चुका है, तो फिर सतयुग रूपी दिन कैसे शुरू हो सकता है? क्योंकि चक्र के नियम के अनुसार रात के बाद दिन आना निश्चित है, कोई रोक सकता है दिन आने को नहीं, लेकिन कौन सा सूर्योदय होगा? तो फिर परमात्मा रूपी ज्ञान सूर्य इस धरा पर अवतरित होते हैं और क्योंकि वो निराकार हैं, मनुष्य की तरह उनका जन्म नहीं होता है, तो वो फिर एक साधारण मनुष्य तन का आधार लेते हैं और जिसका वो आधार लेते हैं उसे वो प्रजापिता ब्रह्मा नाम देते हैं। तो परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है और परमात्मा अवतरित होने के बाद ये आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग की शिक्षा देते हैं ताकि मनुष्यों को फिर से पतित से पावन, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न बना सके। तो उसके लिए वो अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ की स्थापना करते हैं। तो ये कार्य तो 89 इयर्स पहले ही परमात्मा ने शुरू कर दिया 1936 में। तो ये कोई वो वाला यज्ञ नहीं है जिसमें हम अग्नि प्रज्वलित करके कोई स्थूल वस्तुओं की आहुति देते हैं, तिल जौ घी की आहुति देते, नहीं। ये यज्ञ में हम विकारों की आहुति देते हैं, अपनी बुराइयों की आहुति देते हैं और उससे साधारण नर और नारी क्या बन जाते हैं? श्री लक्ष्मी श्री नारायण, जिसके लिए कहते हैं नर ऐसी करनी करे जो नारायण होए, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी हो। तो ये कर्म अकर्म की गति परमात्मा हमें समझाते हैं कि कौन से कर्म करने से हम पुनः अपनी उस अवस्था को जो हमारी आदि स्थिति थी उसको हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस युग को जो परमात्मा अवतरण का युग है इसे हम कहते हैं पुरुषोत्तम संगम युग। और ये पुरुषोत्तम संगम युग ये अति मूल्यवान समय है, वैल्यूबल टाइम है, क्योंकि ये समय के लिए ही हम कहेंगे कि आत्मा परमात्मा का मिलन इस युग में होता है और किसी युग में नहीं होता। और युग में हमें देवात्माएं मिलेंगी, महात्माएं मिलेंगे, धर्म पिताएं मिलेंगे, लेकिन परमात्मा नहीं मिल सकते। परमात्मा पूरे कल्प में एक ही बार इस धरा पर आते हैं। तो ये आत्मा और परमात्मा के मिलन का युग है, इसीलिए इसे संगम कहा। संगम माना जहां मिलन होता है, जैसे दो नदियों के मिलने को भी हम क्या कहते हैं? संगम कहते हैं। या समय मिल रहा है जहां दो युग मिलने वाले, कलयुग और सतयुग के बीच का ये समय है, तो क्या कहा? संगम युग का ये समय है। तो ये इसीलिए संगम युग है जो बहुत छोटा समय है और गुप्त युग है। लगभग 100 वर्ष का ये युग होता है जब परमात्मा अपना कार्य करते हैं और गुप्त है, यानी दुनिया में किसी को भी नहीं मालूम, उन्हीं को ये मालूम होता है जिन्हें वो दिव्य दृष्टि दिव्य बुद्धि की प्राप्ति होती है। और ये श्रेष्ठ कर्म के बीज बोने का समय है, यानी पूरे कल्प की प्रारब्ध हम इस संगम युग पर ही बनाते हैं, क्योंकि ये भाग्य विधाता, भगवान भाग्य विधाता है, तो वो भाग्य विधाता स्वयं भाग्य हमें देते हैं जब इस धरा पर अवतरित होते हैं। तो कई बार लोग मजाक बनाते हैं कि जब ब्रह्मा ने भाग्य बांटा तो आप सोए हुए थे क्या? तो सचमुच सोए हुए होते हैं। ये यादगार किसका है? वो दिन और रात का सोना जागना नहीं, लेकिन कौन सी नींद में सोए हुए होते हैं? अज्ञान नींद में सोए हुए होते हैं और भगवान भागी बांटकर चले जाते हैं और फिर वंचित रह जाते हैं। तो इसीलिए कहा अभी नहीं तो कभी नहीं। तो ये समय, जैसे समय की वैल्यू हमने समझी ना, कि ये समय वो मूल्यवान समय है कि अगर हमने अभी भगवान से भाग्य प्राप्त कर लिया तो जन्म जन्मांतर की प्रारब्ध से हम संपन्न हो जाते हैं, और नहीं तो फिर वो समय हमारे हाथ से निकल जाता है। अब परिवर्तन कैसे होगा? संगम युग में परमात्मा स्थापना का कार्य कर रहे हैं, लेकिन नई सृष्टि के आने के लिए पुरानी सृष्टि का विनाश होना आवश्यक है। क्योंकि कोई मकान अगर बहुत पुराना हो गया है, गिरने की हालत में है, तो क्या किया जाता है? उसे तोड़ के नया बनाया जाता है। या कोई फसल पककर तैयार हो गई है तो उसे पहले काटा जाएगा, तभी फिर नई फसल लगाई जा सकती, पुरानी की जगह पर तो नई नहीं हो सकती। तो इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन कैसे होगा? तो उसके लिए जो है दुनिया में तैयारी है, विनाश की तैयारी है, और वो तीन तरह से महाविनाश होता है। कैसे होता है? एक तो नेचुरल कैलामिटीज, तो हम सुनते हैं आज साइंटिस्ट के द्वारा पर्यावरण असंतुलन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं, इसके कारण पोल्स, उसकी वजह से तापमान बढ़ रहा है, पोल्स पिघल रहे हैं, सी लेवल बढ़ रहा है। तो मौसम में परिवर्तन हम देखते हैं, अचानक कभी भी कोई तूफान होते हैं, कहीं भूकंप होते हैं, कहीं बाढ़ होती है, तो कहीं अकाल होता है। तो ये सब प्रकृति अपना काम करेगी, तो प्रकृति में ये घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और साइंटिस्ट कहते हैं अगर अगले 50 सालों तक हमने इस पर कोई उपाय नहीं किया तो ये दुनिया रहने लायक ही नहीं रहेगी। अभी भी कई शहर ऐसे हैं जहाँ इतना पोल्यूशन है कि वहाँ की सांस लेना भी वहाँ पर जहर, जैसे कि वो वायु का जहर अंदर फेफड़ों में जा रहा है, और लोगों की आयु 10 साल तक वहाँ कम हो जाती है। तो एक टाइम आएगा जब ऑक्सीजन लगा के घूमना पड़ेगा, तो वो शुद्ध वायु भी मनुष्य को नहीं मिल पाएगी। तो प्रकृति की तैयारी हम देख रहे हैं कि ये प्रकृति जो है वो पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। फिर दूसरी तैयारी है एटॉमिक वेपन्स। आज लगभग सभी देशों के पास एटॉमिक वेपन्स हैं, और एटॉमिक वेपन्स कैसे हैं? हम सब जानते हैं कि एक बम पड़ा तो कितना बड़ा विनाश वो कर सकता है, जैसे एक्सपेरिमेंट किया हिरोशिमा नागासाकी में। तो कोल्ड वॉर आज चलती ही रहती है, कितने ही देशों के बीच में आपस में कन्फ्लिक्ट है ही है, वो कब हॉट वॉर में बदल जाए कोई कह सकता है? अभी भी 3-4 युद्ध तो दुनिया में चल ही रहे हैं, वो थर्ड वर्ल्ड वॉर में कब बदल जाएगा कुछ कह नहीं सकते। और आजकल के जो युद्ध है ना, वो मैदानों में नहीं लड़े जाते, आसमानों में लड़े जाते हैं, क्योंकि कहाँ से कंट्रोल हो रहे हैं मिसाइल्स, कहाँ से कंट्रोल हो रही हैं, सब कंप्यूटराइज्ड है आज। तो बटन दबाओ, जहां टारगेट करो वहां पर वो गिरेगी, और उतना उसका जितना भी टारगेट किया है उतना उसका विनाश हो जाएगा। तो कब किसका दिमाग खराब हो जाए कह सकते हैं? है तो इंसान ही ना, कब कौन इतना गुस्से में आ जाए कि ऐसा कोई बटन दबा दे। तो इसीलिए दुनिया बारूद के ढेर पर है, ऐसा हम कह सकते हैं। और ऐसी एक दुनिया, तो क्या कितनी दुनिया खत्म हो जाए, इतनी तैयारी हो रखी है आज दुनिया के अंदर। फिर तीसरा विनाश कैसे होगा? सिविल वॉर्स। आज भी कितने देशों में सिविल वॉर चल रहे, धर्म के नाम पर झगड़े, आपस में ही एक ही धर्म वाले लोग भी आपस में लड़ रहे हैं, दूसरे धर्म की बात तो छोड़ो। आज जो इजराइल और वो युद्ध हो रहा है, कहाँ युद्ध, कौन सा देश है, कोई आपस में ज्यादा दूसरे धर्म के नहीं है, एक ही धर्म के हैं, लेकिन फिर भी आपस में क्या करे जा रहे हैं। तो ये सिविल वॉर भी हम दुनिया में देख रहे हैं, मारकाट करना। तो कई कहते हैं अच्छा बहन जी विनाश होगा, लेकिन क्या भगवान ने कोई डेट बताई है क्या? तो भगवान हमें डेट बताएंगे? वो हमारा पिता है, वो हमें डेथ कॉन्शियस करेगा क्या? हाँ, कोई डॉक्टर भी जानता है कि मरीज कितना समय जीने वाला है। हाँ, उसको अंदाजा होता है कि ये 6 महीना जिएगा या 3 महीना जिएगा, वो बताएगा कभी? वो कहेगा नहीं नहीं तुम ठीक हो जाओगे, क्योंकि उसको पता है कि अगर मैंने बता दिया तो वो 3 महीना भी जीने वाला नहीं है। तो भगवान भी हमें कोई डेथ कॉन्शियस नहीं बनाते हैं या डेट कॉन्शियस नहीं बनाते, लेकिन वो हमें समय की सूचना देते हैं, समय की सावधानी देते हैं कि कौन से समय से हम अभी गुजर रहे हैं और समय से पहले हमको तैयार हो जाना है। आज अगर मौसम विभाग है, तूफान आने वाला है या भूकंप आने वाला है, तो पहले से सूचना देता है। क्यों सूचना देता है? कि जो भी उस एरिया में रहने वाले हैं वो अपनी सेफ्टी कर लें, वहां से वो सेफ स्थानों पर चले जाएं ताकि उनकी जान माल की हानि ना हो। तो हमको भी परमात्मा, क्योंकि आने वाले समय को तो हम नहीं रोक सकते, रोक सकते हैं क्या? हाँ, तूफान को रोक लेगा क्या एक साइंटिस्ट? हाँ, तूफान आ रहा है उसको रोक सकता है? नहीं रोक सकता, लेकिन सूचना दे सकता है। तो ऐसे ही श्री बाबा भी समय को तो नहीं रोक सकते, लेकिन आने वाले समय का संकेत हमें वो देते हैं ताकि अगर हम तैयार हैं, जैसे जो आज हम ये ज्ञान और योग का अभ्यास करते हैं उससे हम आने वाले समय के लिए, जो सतयोगी सृष्टि है उसके लिए हम आत्माएं तैयार हो जाती हैं, तो फिर हमारे लिए इस विनाश का समय जो होता है वो लगभग नहीं के बराबर कष्टदायक होता है। हम सहज उस समय को पार कर लेते हैं, क्योंकि वो पावर आत्मा के अंदर, वो शक्ति आत्मा के अंदर है। तो अब हम नाटक के अंतिम चरण, सृष्टि नाटक है ना, इसके अंतिम चरण पर हम पहुंच चुके हैं। तो जब नाटक का अंतिम चरण होता है तो जो एक्टर्स होते हैं वो अपना अपना ड्रेस उतार के अपने अपने घर जाते हैं, है ना, घर अलग होता है और स्टेज अलग होता है। तो सृष्टि तो एक रंगमंच है, जिसे शेक्सपियर ने कहा, दिस वर्ल्ड इज ए बिग ड्रामा एंड वी आर ऑल एक्टर्स प्लेइंग अवर रोल ओवर हियर। तो अब हमारा रोल पूरा होगा तो हमें वापस जाना है, लेकिन ये ड्रेस उतार कर, ये शरीर लेकर आत्मा नहीं जाने वाली। तो शरीर रूपी ड्रेस यहीं मिलती है और यहीं हमको छोड़ना होता है। तो आत्मा अपने मूल स्वरूप में वापस जाती है, उसे वही शांत स्वरूप, प्रेम स्वरूप, पवित्र स्वरूप में आकर परम धाम में जाना है। और फिर वापस पाठ के अनुसार हम सतयुग में आएंगे, जहां हमारा जो रोल है, माना जिस योग्य हमारी आत्मा बनी। अभी शिव बाबा परमात्मा हमें वो पुरुषार्थ करा रहे हैं, जिस योग्य हम बन जाते हैं। मानो हमने 16 कला संपूर्ण की स्थिति प्राप्त कर ली तो हम सतयुग में आने के अधिकारी बन गए। अगर हम 14 कला बने तो त्रेता युग में, अगर हम 8 कला ही हो पाए तो हम द्वापर युग में। तभी तो वर्ल्ड की पॉपुलेशन बढ़ती है, क्योंकि आत्मा तो जन्मती मरती नहीं है। कौन जन्मता मरता है? शरीर जन्मता और मरता है। तो आत्माएं तो फिर परम धाम से अपने अपने समय अनुसार आती रहती हैं, तो जनसंख्या बढ़ती जाती है और जो हैं वो यहीं रहती हैं, जो यहाँ आ गई वो वापस नहीं जा सकती। तो फिर हमारा रोल कौन सा होना चाहिए इस वर्ल्ड ड्रामा में? जैसे हीरो एक्टर होते हैं तो शुरू से लेकर लास्ट तक उनका रोल होता है, चाहे फिल्म हो या ड्रामा हो। और जो साइड एक्टर होते हैं वो बीच में आते हैं, अपना थोड़ा रोल प्ले करके चले जाते हैं। तो फिर हम कौन से एक्टर बनना चाहेंगे इस वर्ल्ड ड्रामा में? हाँ, जो समझते हैं हम हीरो एक्टर बनना चाहेंगे वो हाथ उठाइए। देखिए मेजोरिटी। तो फिर हीरो एक्टर बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? जरूर पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हम उस लायक बनेंगे कि हम सतयुग के आदि में, क्योंकि जो शुरू से यानी आदि समय से सतयुग से लेकर पूरे कलयुग तक पाठ बजाएंगे, यानी पूरे 84 जन्म इसमें पाठ बजाएंगे, वो हीरो एक्टर हैं इस वर्ल्ड ड्रामा के। तो फिर हम हीरो एक्टर होके आएंगे इस दुनिया के अंदर। तो इसीलिए परमात्मा हमें ये राज, समय का राज जो है वो स्पष्ट करते हैं, और इस समय के अनुसार हमने पुरुषार्थ कर लिया तो हम सर्व भाग्य प्राप्त करने के परमात्मा से अधिकारी बन जाते हैं, और अगर अभी नहीं तो कभी नहीं। तो फिर ये तो हम नहीं चाहेंगे ना, तो इसीलिए जब जागे तब सवेरा, इसीलिए कहते हैं कि अभी भी हमें ये दृष्टि मिल गई, भगवान से ये दिव्य बुद्धि मिल गई, तो अभी से ही हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना शुरू कर देना है। ओम शांति।
बहुत धन्यवाद सविता बहन जी को। ऑल द वे शी हैज कम फ्रॉम शांतिवन, सो लेट अस गिव अ बिग हैंड टू हर। शी गेव अ वेरी गुड नॉलेज ऑफ टाइम, साइकिल ऑफ टाइम। सो थैंक यू सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। ओम शांति।